आपका पूछने का मतलब है कि मन कहाँ रहता है? ये किनका है ये? ओके, पहला प्रश्न आपका शुभ नाम क्या है?
परमजीत।
इनका ये प्रश्न है कि शरीर के अंदर पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां हैं, आँखें हैं, नाक है, कान है, चमड़ी है, जिन चीज़ों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, नहीं, एक मन है वो कहाँ रहता है? और मन इतना भागता दौड़ता क्यों है? यही है ना प्रश्न? पहली बात तो ये समझना है कि मन कहते किसको हैं। संकल्पो विकल्पो मन, जो एक ख्याल उठता है वो ख्याल ही मन है। जैसे बैठे हैं, ख्याल हुआ इसको उठा लें, तो इसको उठाने तक चार काम हो जाता है। पहले एक फुरना फुरता है, उठाएं, और चित्त चिंतन कर लेता है उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। बुद्धि निश्चय कर लेती है हाँ उठाना चाहिए, और अहंकार उठा लेता है। सिर्फ इसको उठाया और चार काम हो गया, लेकिन इतना फास्ट होता है कि हमें पता नहीं चलता। लेकिन जो सबसे पहले जो ख्याल उठा उठाने का, ये मन है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एक ही चीज है, एक ही मन के चार फंक्शन है, समझ गए? मन ही ख्याल करता है, मन ही चिंतन करता है, मन ही जो है बुद्धि बन के निश्चय करता है, और मन ही अहंकार मन करके उठाता है वस्तु। कोई भी क्रिया अहंकार से होती है, ठीक। अब ये प्रश्न है कि मन रहता कहाँ है हमारे शरीर में? सामान्य रूप से मैंने जनरली, यहाँ मस्तक से लेकर के पांव तक, पांव की उंगलियों तक, पूरे शरीर में मन व्याप्त है सामान्य रूप से, जनरली। और विशेष रूप से जागृत अवस्था में मन आँख में होता है। और स्वप्न अवस्था में मन कंठ में हिता नामक नाड़ी है, वहाँ होता है विशेष रूप से। सामान्य रूप से पूरे बॉडी च। और साउंड स्लीप, साउंड स्लीप में विशेष करके मन जो है एक पुरीतत नाम की नाड़ी है हृदय में, वहाँ मन होता है विशेष रूप से, सामान्य रूप से पूरे बॉडी से होना। पुरीतत नामक नाड़ी है। जो हिता नामक नाड़ी है वो इतनी सूक्ष्म है कि ये केस के हजारवां हिस्सा कर दो, इतनी बारीक नाड़ी है जिसमें आदमी स्वप्न देखता है। अब हो गया उत्तर आपका, अब यहाँ आ जाते हैं। वो सिर्फ ऐसा छोटी सी नहीं ना है, ऐसा नहीं, वो जो है, और कहते हैं कि यदि वो कट जाए ना तो आदमी बच नहीं सकता। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं यहाँ पर, कहते हैं वो कट जाए तो बच नहीं सकता। लिंक शरीर के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके डिस्ट्रॉय होने से आदमी बच नहीं सकता। जैसे मस्तिष्क में कुछ ऐसी नाड़ी है, कंठ में कुछ ऐसी नाड़ी है, हृदय के पास कुछ ऐसी नाड़ी है जिसके डिस्ट्रॉय होने से आदमी नहीं बच सकता। कुछ ऐसा है। आपका शुभ नाम क्या है जिन्होंने भी? हाँ जी, अच्छा, श्री मांगट। श्री मांगट जी का कुछ प्रश्न है जरूरी। सत्कार योग स्वामी जी, गुरु बिन गत नहीं, साह बिन पत नहीं। हाउ महात्मा बुद्धा गौतम गॉट साल्वेशन विदाउट गुरु? यदि विचार करके देखा जाए तो ये सच्चाई है कि गुरु के बगैर आदमी क्लाइमेक्स में नहीं पहुंचता। उस परम दशा जिसको आप साल्वेशन कह दो, मुक्ति कह दो, इनलाइटनमेंट कह दो, उस परम अवस्था को गुरु के बगैर आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। तो महात्मा बुद्ध ने गुरु के बगैर कैसे साल्वेशन को पा लिए, ये है ना क्वेश्चन। पहली बात तो है कि महात्मा बुद्ध ने एक गुरु के पास नहीं, वो बीसों के पास गए हैं वो, और हर एक ने अलग अलग साधनाएं कराए। किसी ने कहा कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखो, किसी ने कहा कि एक पांव पर खड़े रह करके 40 दिन ये जाप करो, और एक गुरु ने तो उसका एक चावल खा करके 3 महीना रहो, एक चावल रोज खाना, ओनली वन। और इतने बड़े शरीर को एक चावल दोगे 24 घंटा में, 3 महीने में क्या हो? तो उनका शरीर जो है ना, सारा मांस खत्म हो गया, सिर्फ हड्डियां ही रह गई थी। और निरंजना नदी है जिसको आजकल फल्गु नदी बोलते हैं, उस वक्त निरंजना नदी कहते थे। उसमें पानी सिर्फ 1.5 फुट पानी था, 2 फुट, 1.5-2 फुट पानी में ही गिर पड़े तो बहने लग पड़े, इतनी शक्ति नहीं थी शरीर में कि बच। किसी तरह एक टहनी था दरख्त का किनारे में, वो पकड़ ली, बहुत मुश्किल से खड़े हो पाए। दोनों बातें हैं कि गुरु के बगैर ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन अंत में एक ऐसी घड़ी आती है इन द लास्ट, वहां गुरु भी पीछे रह जाता है। जैसे मैं गुरुद्वारा में हूं और हमको मंदिर आना है, हमने देखा नहीं है मंदिर को, कोई व्यक्ति हमको साथ लेके आता है रोड तक और कहता है कि स्वामी जी चले जाओ यही मंदिर है, और वो बैक हो जाता है कि उसको भी साथ आने की जरूरत है, उसको साथ आने की जरूरत नहीं और वो ऑलरेडी यहां आ चुका है, समझे ना, इसीलिए तो उसको कन्फर्मेशन है कि ये मंदिर है। तो गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता, लेकिन इन द लास्ट जब लास्ट घटना घटनी होती है तो उस वेले इशारा करके गुरु भी पीछे रह जाता है। जब शरीर पीछे रह जाता है, इंद्रियां पीछे रह जाती है, मन बुद्धि पीछे रह जाता है, सब पीछे रह जाता है, क्योंकि अंत में शरीर भी नहीं जाता, इंद्रियां भी नहीं जाती, मन भी नहीं जाता, बुद्धि भी नहीं जाता, सब कुछ परे करने के बाद दैट विच रिमेन्स ओनली, जो बच जाता है वो वही है और कौन है। एक तो ये हो गया, दूसरा प्रश्न है, प्लीज आंसर इफ यू वांट, हु इज योर गुरु। हमारे श्री गुरुदेव जी का नाम है श्रीमान स्वामी नारायण सिंह जी। जिनके द्वारा, जिनकी कृपा से रूहानी ज्ञान प्राप्त हुआ है, और इनके अलावे लगभग 8 हमारे गुरु और थे, समझे ना, जिनके द्वारा हमने मार्गदर्शन पाया है। क्योंकि हर एक महापुरुष ने जो हमें थोड़ा दूर तक भेजे हैं, तो उनकी भी तो अनुकंपा रही है ना, हम उनकी अनुकंपा को भुला नहीं सकते, इसलिए हम उनको पूर्ण गुरु जैसा सत्कार देते रहे। एक दत्तात्रेय हुए हैं संत दत्तात्रेय, उन्होंने 24 गुरु धारण किए थे, समझ गए, जिसमें एक बार एक गिद्ध था, गिद्ध जिसको काइट बोलते हैं ना अंग्रेजी, जो आकाश में उड़ते रहता है और नीचे चूहा वगैरह कोई मरा हुआ पशु हो तो उसको आके खा,
पंजाबी में गिरज बोलते
हैं अगर, अच्छा, तो वो जो गिद्ध है काइट उड़ रहा था, उसके पंजे में एक चूहा था, तो 4-5 गिद्ध जो है ना उसको मार रहा था चोंच से, सारे लोग मार रहा था चोंच से, और वो गिद्ध लहूलुहान हो गया, अचानक उसके पांव से ना जो चूहा था मरा हुआ वो छूट गया। जब वो छूट गया तो जो पांच छह गिद्ध उसको मार रहे थे ना, उस गिद्ध को छोड़ दिया और सारे चूहे की तरह भाग गए। समझ गए? दत्तात्रेय देख रहे थे उसको और उस गिद्ध को गुरु बनाए। इसका भाव क्या है? जब तक आपके पास पैसे हैं, पदार्थ है ना, तब तक परिवार का हर एक मेंबर, रिलेटिव्स, दोस्त चोंच मारेगा। समझे कि और स्वामी जी भी चाहे तो मुझे कुछ दे दो, नहीं होगा तो फिर नहीं बोलेंगे। मैं भी चाहूंगा व्यास कोई सेंटर बनाना, मेडिटेशन मुझे भी दे दो, मैं भी चाहूंगा। समझे? हर एक ने चोंच मारना है आपको। और जिस दिन आपके हाथ से किसी कारण से निकल गया तो कोई निर्णय नहीं आएगा, आप विश्राम को पाओगे। इसका मतलब क्या है कि त्याग में आनंद है और संग्रह में जो है इकट्ठा करने में दुख है। जब तक चूहा था उसके पास वो सारे उसको चोंच मार रहे थे, जैसे ही चूहा नीचे गिरा सारे ने छोड़ दिया और वो गिद्ध जो था बड़ा आराम से एक दरख्त के ऊपर बैठा और विचार करने लगा कि ये मुझको क्यों हमको सता रहे थे। वो इसके कारण सता रहे थे, लड़का लड़की, पति पत्नी, संबंधी, ये जो तुम्हें चोंच मारते रहते हैं सुबह से शाम, वो जब तक है नहीं तो वो आपे पांव पर खड़े होंगे, कुछ देखेंगे है ही नहीं, डैडी जी के पास है ही नहीं, मम्मी के पास है ही नहीं, तो फिर मैं आप पे करूँ कुछ। लेकिन जब तक तुम उसके लिए कर रहे हो वो काहे को करेगा, फिर वो तो सोएगा सारा दिन सारी रात।
तो फिर स्वामी जी जो आपके आठ गुरु थे आप उन आठों का ही मंत्र करते
हैं? नहीं, मंत्र तो एक दिए ना जिनके बारे में बताया मैं। हाँ। जो मैं आपको बताया ना कि वो हमारे शिक्षा गुरु थे। गुरु तो श्रीमान स्वामी नारायण सिंह जी के बारे में आपको बताया ना, जो और सात थे उनसे हमने किन्हीं से योग सीखा है, समझे ना, मेडिटेशन सीखा है, किन्हीं से हम वेदांत के ग्रंथ, किसी से गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़े हैं, तो जिन्होंने हमें रूहानी विद्या दिया है अलग अलग, तो वो भी तो हमारे गुरु ही हैं ना। मैं उनको पूर्ण सत्कार उसी प्रकार से दिया है, भावे वो सड़क पर आ रहे हो सारी दुनिया कुछ भी कहता रहे कि देहधारी गुरु को नहीं मानना, हमें संसार से परवाह नहीं, हमने तो लंबे पढ़ के नमस्कार करते रहे, हमें सारी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, सारी दुनिया अपना नियम रखे अपने पास, समझे ना। लेकिन हमने जिन महापुरुषों से रूहानी चीजें पाई है, वो भावे सड़क पर हो सारी दुनिया देख रहा हो, सारी दुनिया मुझे कुछ कहता रहे, हमने शुरू से क्रांतिकारी रहे और जो हमारा इनर कहा है उसको हमने फेस किया है, एक किसी का परवाह नहीं किया। समझ रहे हैं? उस मार्ग में जाने के लिए हमने समाज को एक्सेप्ट नहीं किया, समाज अपने ढंग से चलती, समझे ना, और हमेशा सत्य का खोजी और जो सत्य को पा लेता है, ये दोनों का ढंग अपना ही होता है, निराला ही होता है, समझे रहे ना? वो बंधी बंधाई लकीर में नहीं चलता। आज सारे गुरुद्वारों में प्रचार होता है कि एक साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अलावे किसी को मत्था नहीं टेकना। वो कहता रहे हमें क्या, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम और हम किसी को बाध्य नहीं करते तुम ऐसा करो, किसी को नहीं बोलते। लेकिन जो पर्सनली जो मेरी लाइफ है उसमें हमने ऐसा ही करते रहे कि जिन महापुरुषों के पास रह के हमने कुछ पाया है ना, वो कहीं जा रहे हों भावें गुरुद्वारे में हो चाहे कहीं, हमने तो लम्बे पढ़ के नमस्कार करते रहे, लोगों ने रोकते भी रहे कुछ, नो प्रॉब्लम। ये हमारी लाइफ है, हम अपने ढंग से जीना है, समझे? और हालांकि उस सत्य के मार्ग पर जाने में बहुत से लोग टूटते हैं, बहुत से लोगों के साथ मुश्किलात भी होती है, लेकिन नो प्रॉब्लम, हमने कभी परवाह नहीं की कि कौन कोई मानता है ना माने, कोई भी उससे हमें कोई लिंक नहीं।
समझिए आधा आधा डोर बंद कर दें, ज्यादा ठंडी आ रही है।
अच्छा बंद कर दो,
आधा आधा कर दो,
ठीक है। अच्छा एक दूसरा इनका प्रश्न इसी से संबंधित है, हुई गुरु तो हो गया, योर फैमिली बैकग्राउंड, योर एकेडमिक स्पिरिचुअल रिलीजियस एजुकेशन। ऐसे तो योर फैमिली बैकग्राउंड जो है ये शरीर बिहार का एक जगह है गया जिला, गया जी और राजगृह के बीच में एक छोटा सा है शहर जैसे स्क्वेमिस वगैरह है ना, यहाँ छोटा सा शहर जैसे पंजाब में आप रख लो गुराया वगैरह जैसा है छोटा सा, खन्ना से थोड़ा सा छोटा ऐसा शहर है राजगृह और गया के बीच में, उसका हिसुआ नाम है हिसुआ, तो ये वहाँ पैदा हुआ। तो जैसे एजुकेशन लोग लेते हैं वैसे लेता था। हमारी माता जी कहती हैं कि जब मैं 5 साल का था, 4.5-5 साल का था, तो एक महात्मा बुद्ध का जैसे कैलेंडर है ना, कैलेंडर कहीं गिरा हुआ था महात्मा बुद्ध का, उस कैलेंडर को ले आया और जो अपना घर था ना वो बना तो थोड़ा था लेकिन साथ में बगीचा भी था, साथ में खेत भी थे अपने, उसमें अमरूद वगैरह इन चीज़ों के दरख्त लगे थे। तो उसमें क्या किया कि ऐसे पराली का ऐसे झोपड़ी जैसा बना करके उसके अंदर महात्मा बुद्ध का जो चित्र है वो टांग दिया, और 4.5-5 साल का उम्र, मुझे तो कुछ ज्ञान तो था नहीं, लेकिन जैसे कोई नकल करता है ना ऐसे बैठने का, इस तरफ बैठने का नकल करता था, कभी कभी आँख खोल कर देखता था वो देख रहे कि नहीं मुझको, तो वो ऐसा जो है ना हमारी माता जी कहती हैं। फिर खेलने लगना, लेकिन रोज कभी कभी 2-4 दिन में वहाँ पर जा कर के बैठना, ऐसा वो हमारी माता जी बताती हैं। और मुझको संत बहुत अच्छे लगते थे वो बहुत बचपन से, कोई भी भगवे कपड़े वाला संत हो या किसी सफ़ेद कपड़े वाले संत हो, किसी संप्रदाय के भी संत हो, वो मुझको देख करके ना बहुत अच्छा लगता था। हुआ क्या कि वहाँ पर एजुकेशन जो है हायर सेकेंडरी तक है, प्लस टू तक। प्लस टू के बाद गया जाना पड़ता है कॉलेज, जो है ना गया कॉलेज, गया जहाँ पर बोध गया है ना, बोध गया से 8 किलोमीटर दूर वहाँ पर कॉलेज था, और वो हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर न दो विद्यार्थी एक कमरा लेके रहते थे और कॉलेज में पढ़ना। तो मेरा जो स्वभाव शुरू से खर्चालू कुछ ज़्यादा था, समझे कि नहीं, जितने माता पिता ने देना वो तो 15 दिन में ही ख़त्म हो जाना। वो जो मेरा साथी था उसका भी कुछ कर्जा मेरे ऊपर चढ़ जाना जो है, समझे न, उससे मांग ले रहा। फिर क्या हुआ कि मैंने साथ में ट्यूशन पढ़ाने लगा, सातवीं आठवीं के बच्चे को, दो तीन बच्चे को पढ़ाने लगा। फिर जा करके एक तो घर से पैसा मिलना, एक वो मिलना, फिर जा करके मेरा गुजारा ठीक से हुआ। क्या कि एक उसमें से वहाँ पर गुरुद्वारा था, वहाँ गया जी में एक ही गुरुद्वारा है, वो वहाँ के जो ग्रंथी थे वो बहुत अच्छे थे। तो उनका लड़का ना 2 बार आठवीं में फेल कर गया था। आठवीं में फेल कर जाने के कारण वो मेरे पास ने ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजा। तो वो पढ़ा अच्छी तरह, परमात्मा की दया से वो सेकेंड क्लास पास कर गया आठवीं। जब आठवीं पास कर गया तो उसके पिता ने मुझे ऐसे गिफ्ट के रूप में पैसे वगैरह भी दिया काफ़ी। कहता मास्टर जी आप कहाँ रहते, वो मास्टर जी बोलते थे, कहते कहाँ रहते, मैं कहा जी दो लड़के हम लोग किराए पर रहते हैं, कॉलेज पढ़ने जाते हैं। कहते हैं आप चाहो तो मैं आपको एक कमरा ऊपर दे दूँ गुरुद्वारे में जहाँ मैं रहता हूँ साथ में, आप यहाँ रहो, तो रोटी पानी की भी व्यवस्था जो है सब मैं आपको दिया करूँ। तो मैं मन में सोचा ये तो बहुत अच्छा काम है। तो एक तो मेरा किराया भी बच जाएगा और रोटी पानी जो है सो, ऐसे दो लड़के मिल करके बनाना पड़ता था, समझे कि नहीं। तो ऐसा ही हुआ, वो गुरुद्वारे में रहने लगा। फिर उस लड़के को ना मैं सुबह भी पढ़ा दिया करूँ, शाम को भी पढ़ा दिया करूँ। उसके जो माता पिता थे ना वो बड़े खुश, ज्ञानी जी, और उन्होंने बहुत बहुत सेवा की है, समझे ना, जो भी एक दो साल रहा, 1.5 साल। तो उन्होंने जब भी मैं प्रसादा छकना, उन्होंने गुरु नानक देव जी का, गुरु अमरदास जी का, गुरु गोविंद सिंह जी की साखियां सुनाना। फिर जैसे संडे के दिन है, छुट्टी है, तो अंदर कीर्तन सुनना, कोई कथा कह रहे हो सुना, इस तरीके वो थोड़ा संस्कार होता गया। लेकिन अटैचमेंट जो है ना मेरा वो भगवान बुद्ध से था। वो हर एक संडे साइकिल से जाना जहाँ पर वो इनलाइटेंड हुए हैं, वो मंदिर है ना अभी, और वो दरख्त जो पीपल का दरख्त था वो अभी भी है, वहाँ पर जा करके ऐसे ही बैठना, कोई मेडिटेशन आता तो नहीं था, वैसे नकल करना जो ऐसे आप जाके बैठना, और मन में होता था कि परमात्मा आएंगे दर्शन देंगे, आँख खोल के भी देखना बीच बीच में। वो कोई दर्शन तो होता नहीं था, समझे कि नहीं। तो वो हर एक संडे में साइकिल से वहाँ से 8 किलोमीटर था जाता था। फिर भगवान बुद्ध की हिस्ट्री को पढ़ना, वो कैसे घर से निकल गए, अपना राजपाट छोड़ दिया सारा कुछ, और जहाँ पर उन्होंने ज़्यादा तपस्या किए हैं वो हमारे घर से 14 किलोमीटर दूर है, उस जगह का नाम है राजगिरी। उसी जगह पर भगवान महावीर ने भी तपस्या की है, वो इलाका बहुत पावरफुल है। तो जब महात्मा बुद्ध की हिस्ट्री पढ़ता गया मेरे मन में वैराग्य आने लगा। मैंने ये विचार किया कि हमने तो सत्य की खोज करना है, तो ये विद्या पढ़ के हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे एक फुफड़ थे वो बैंक में मैनेजर थे, सेंट्रल बैंक में, तो उन्होंने मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स रखे उन्होंने, तो मैं बीकॉम ऑनर्स में पढ़ रहा था, वो जिसमें 10 सब्जेक्ट तो थे ही, साथ में इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट और पब्लिक फिनांस, ये 3 सब्जेक्ट ऑनर्स में ज़्यादा थे। आप ये देखो कि उनकी हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते और महापुरुषों का जीवनी पढ़ते पढ़ते मैंने ये निर्णय लिया कि जिन लोगों ने भी पाया है वो उसने सब घर वगैरह छोड़ करके चले गए और फिर उसको पाया है, ये धंधे करते नहीं पाया। हमने ऐसा कुछ महापुरुषों को पढ़ा, तो मैं क्या, जब हमको सत्य की खोज करना है, परमात्मा की खोज करनी है, तो ये विद्या तो हमारा कोई सहायक ही नहीं है, हमने तो ऐसा जीना ही नहीं, क्योंकि धीरे 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 कोई पूर्वजनों का संस्कार कहो जो भी कहो, मेरा मन थोड़ा उदास रहने लगा। एक दिन अभी 10 पेपर दे चुका था, 3 पेपर और देना था बीकॉम ऑनर्स का, रात को जो भी हमारे बुक्स थे कॉमर्स के उसको गुरुद्वारे के कमरे में रखा और दिया सलाई से उसको जला दिया, सारे को जला दिया, और आधी रात को ही निकल गया गुरुद्वारे से, किसी को बताया नहीं, और मेरे पास सिर्फ 150-200 रुपया था, समझे कि 150-200 रुपया था। तो मैंने सुन रखा था कि बनारस जो है वहाँ पर बड़े बड़े महापुरुष रहते हैं, और मेरे मन में ये होता था कि जो भगवे कपड़े पहनते हैं वो परमात्मा को पा लेते हैं, मेरे दिमाग जब जिस लाइन का पता ना होए ना, जो साधु जो लोग होते हैं वो परमात्मा को पा लेते हैं। वहाँ से जी मैं पैदल जा रहा हूँ, एक ट्रक को मैं हाथ दिया तो वो जा रहा था बनारस की तरफ, मैंने उसके ऊपर बैठ गया, वो पता नहीं 10 रुपया या 5 रुपया जो भी मांगा उसको दिया, बनारस पहुंचा दी। कहते बनारस में कहाँ, मैं क्या बनारस पहुंचा दो, कहीं भी पहुंचा दो। और वहाँ पर जब पहुँच करके जी, मतलब काफ़ी कष्ट हुआ, कहीं सोना, और कोई भी भगवे कपड़े वाले संत को देखूं, उसको पाँव बैठ के नमस्कार करूं, पाँव परमात्मा कहाँ मिलता है, उसने कहा आगे जाओ, वो सोचना पागल जो है आगे जाओ। वो मैं इस तरीके से न मैं आगे जाऊँ, लेकिन मैं धीरे धीरे काफ़ी निराश हो गया, समझे ना। फिर किसी ने कहा मिर्जागंज में एक संत है वहाँ जाओ, वहाँ गया तो किसी ने मुझको बताया कि ये जो विंध्याचल पर्वत है साथ में वहाँ गंगा जी बहती है, और उस पहाड़ को ऐसा मानते हैं कि अभी भी जीवंत तो वहाँ पर देवता लोग हैं। वो विंध्याचल पर्वत के ने ऊपर टॉप में कहते एक संत हैं उनके पास, वहाँ पर गया, वो चप्पल था कैची अपना वो टूट गया रास्ते, समझे, और ऐसे कंकड़ पत्थर बड़ा कष्ट भी थे, लेकिन मैं किसी तरह वहाँ पहुँचा। जब पहुँचा ना वहाँ करीब 12-1 बजे पहुँचा, तो कोई भी नहीं वहाँ, वहाँ पर भेड़ बकरियाँ चराते हैं, उनसे पूछा मैं कि यहाँ पर जी एक संत रहते हैं, एक कुटिया सा है, जो कहते रहते तो हैं लेकिन वो गंगा जी स्नान करने गए नीचे। मेरे अंदर इतना धीरज नहीं कि मैं वेट कर लो दो घंटा मतलब पागलपन देखो, नीचे गया मैं, समझा कि आज जब नीचे गया घाट में तो मैं कहा जी यहाँ पर एक संत ऊपर से आए स्नान करने के लिए, तो कहते वो तो अभी गए, 15-20 मिनट हो रहा है वो मेरा मन बड़ा खराब, मैं रोया जैसा हो गया। फिर जो एक तो सारा दिन का भूखा कुछ खाया नहीं, किसी तरह मैं फिर ऊपर गया, शाम हो गया, ऊपर चढ़ने में शाम का शाम हो गया, शाम हो गया तो वो जो महापुरुष थे उनको मत्था टेका सारा कुछ, उन्होंने बकरियों बकरी का दूध थोड़ा सा दिया पीने के लिए, वो पिए, और मैं उनसे पूछा कि जी मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, हमें आप दर्शन करें। उन्होंने ईमानदारी से बताया कि देखो हम साधना कर रहे हैं लेकिन हमको अभी वो अनुभव नहीं हुआ, तो आप बनारस में जाओ, ऐसे ऐसे जगह पर जाओ, वहाँ पर एक स्वामी करपात्री जी थे, करपात्री जी महाराज उनके पास जाओ। इस तरह वहाँ गए तो एक संत थे वो हमको लखीमपुर खीरी ले गए, लखीमपुर खीरी ले गए, वो आश्रम है लखीमपुर खीरी में, निर्मल आश्रम, वहाँ रहने लगा। वहाँ पर कुछ दिन रहा, 10-15 दिन, तो वहाँ भी मन न लगे मेरा। मैं क्या ध्रुव भगत ने, प्रहलाद ने, इन लोगों ने भक्ति किया, सिमरन किया और परमात्मा ना के दर्शन दिए, और एकांत में जंगल में जाके किया उसने, तुम तो आश्रम में आ गया। वहाँ पर जी किसी को बताया नहीं आश्रम में, थोड़ा दूर आगे जा कर के नदी था, अरहर आप लोग जानते हैं, अरहर है? वो अरहर जो है ना होता है बड़ा, गन्ना तो मोटा होता है ना, वो पतला पतला होता है लेकिन ऊंचा होता है काफ़ी, आदमी से भी ऊंचा हो जाता है, उसके अंदर थोड़ा भी चले जाना तो बाहर से दिखता नहीं है, समझे ना। मैं जी वो खेत के बीच में चला गया, जा कर के ना राम राम जाप कर, मैं क्या कि ध्रुव भगत ने, प्रहलाद ने राम राम जपा और परमात्मा ने दर्शन दिया। राम 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 जपी जावा, वो एक दिन हो गया, और ये भी कि उन्होंने भूखे प्यासे किया था तो दर्शन दिया था, समय मुझे एक दिन हो गया। दूसरे दिन बड़ा कमजोरी लगे मुझे शरीर में, समझे ना, तो वह साथ में नदी था तो नदी में पानी पी लेना, फिर मैं अंदर चला जाना, राम राम जपी जा जपी जा। तीसरे दिन ने बहुत बारिश हुई, बारिश हुई वो सारा नीचे चिक्कड़ जैसा हो गया, सारा कपड़ा भींगा हुआ, ठंड भी लगे, कभी कभी डर भी लगे बड़ा के कोई यहाँ वो वहाँ पर जो है ना गीदड़ जो है ना बहुत होते हैं उधर, रात को भौंकते भी हैं और बड़ा डर जैसा भी लगे सारा कुछ। लेकिन मैं कहा चलो कोई नहीं, अब तो मर ही जाना है लेकिन राम राम जपी जाओ। चौथे दिन जी जैसे ना कोई ऐसे बिजली जैसा चमकता है, आकाशवाणी जैसी हुई कि परमात्मा ऐसे नहीं मिलता, तुम किसी महापुरुष को गुरु धारण करो और वो ज्ञान देंगे तब जाकर के परमात्मा का दर्शन, जैसे कोई आके बोल रहा हो मुझे एकदम आकाशवाणी जैसे। फिर मैं चौथे दिन, चौथे या पांचवें मुझे कन्फर्मेशन नहीं, चौथे दिन उठ करके ना सारा कपड़ा लिबड़ा हुआ मैं आश्रम में गया। आश्रम गया तो सारे जो आश्रम के महंत हैं सारे कहते हमने जी कितने जगह लोगों को भेजा है, कहाँ चला गया बताया नहीं कुछ, मेरा कपड़ा लबड़ा देखा तो पागल हो गया। वह जाकर ने वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी करते हैं, मत्था टेका और आके उसे अंदर बम्बी भी है उसमें स्नान वगैरह किया और फिर मैं उनको सारा कुछ पूछे तो बताया था। कहते हैं कि भाई तुमने बता देना था, ये करना था, हम लोग चिंता में थे लोग पूछेंगे केस हो जाता ये हो जाता है सर। वह क्या भी? लेकिन उन लोग सोचे कि ये पागल है आधा सोचे कि वह रहने लगा। वहाँ पर एक महापुरुष थे श्रीमान महंत हरि सिंह जी, वो अमृतसर रहते थे। उन्होंने मेरे नेचर को देख करके सारा कहते हैं कि मैं इनको पंजाब ले जाता हूँ, कहते हैं आप पंजाब चलो मेरे साथ, वहाँ पर बड़े बड़े महापुरुष हैं और गुरबानी की विद्या देंगे और सारा कुछ। वो ले आए ए दास, फिर वहाँ रहा अमृतसर, फिर हरिद्वार रहा, फिर तो बहुत लंबी, मतलब कहने का भाव कि हमने ऐसे फिर अमृतसर में श्रीमान स्वामी नारायण सिंह जी से मुलाकात हुआ और वो थे साउथ इंडियन, लेकिन उन्होंने पंजाब में रह करके गुरबानी और वेद शास्त्र को हरिद्वार में पढ़े और साधना की। और तो इस तरीके से मतलब हिस्ट्री तो काफ़ी लंबी है, लेकिन मेरा कहने का भाव संक्षेप में कि इस तरीके से अपनी जीवन यात्रा चलती रहे। हमारे माता पिता थे वो काफ़ी रोए, वो लखीमपुर खीरी आए समझे ना, तो वो जो संत थे श्रीमान महंत हरि सिंह जी उनको बहुत बेनती करे कि इनको समझा के भेजो, लेकिन कहते हैं जी इसका कुछ ऐसा भविष्य है कि ये जाएगा तो फिर भी चला जाएगा। मेरे पिताजी काफ़ी रोए, माता भी रोए कि इसको को कम से कम साल में एक बार जरूर आया, और साल में तो नहीं लेकिन मैं 4-5 साल के बाद एक बार जाता रहा। फिर ये दास 90 में मतलब 90 करीब 13-14 साल के बाद, जब से घर निकला ना तो 14 साल के बाद रख लो अंदाजे, मैं उसके पहले ना पहाड़ों में रहता था, 85-86 में हिमालय में रहता था भागसुनाथ, और कुछ मैं योग वगैरह ऐसे ध्यान वगैरह करता था, तो झरने का पानी वगैरह पीना सारा कुछ। तो ऐसा बताते हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसा चला गया एक यहाँ और वो जो स्पाइन है इसको खा गया, और नाड़ी प्रेस करने से गले से नीचे ने पूरा अधरंग हो गया है, टोटली यहाँ से नीचे डेड हो गया। आप ये सोचो कि मैं अपनी गर्दन को इधर से इधर नहीं कर सकता था, एक साल बेड के ऊपर हॉस्पिटल में रहा, मुझे ये नहीं पता पेशाब टॉयलेट क्या है सारा कुछ ऐसा। वहाँ पर क्योंकि मैं बहुत कम उम्र से ना, मैं 82-83 में ही मेडिटेशन सिखाने लग पड़ा था वहाँ पुरुषों की कृपा से, तो आप देख लो करीब 27 साल हो गया। उस वाले उम्र सिर्फ मेरा 25-26 था, लेकिन फिर भी महापुरुषों की देन थी। ओके, जब 90 में हॉस्पिटल में था तो सारा दिन लेटे रहना और सिर्फ सिर, सारा शरीर तो काम करता नहीं था पूरा, तो तो मैं सिर्फ ये देखना कि जैसे हमारे मिलने वाले लोग आते हैं, उन्होंने सेव रख देना या कुछ पैसे रख देना, 5-10 मिनट बैठने के बाद नमस्कार करके चला जाना। मतलब कोई भी लोग ये नहीं कि मैं एक दिन रहा इनके पास, 2 दिन रहा, समझे कि नहीं। अच्छा, और बहुत से लोगों को महीना महीना में उन लोगों को ग्रंथ पढ़ाना, ध्यान कराना, ये करना करना। वहाँ पर हॉस्पिटल में क्या देखना कि भावे कोई भिखमंगा है, चाहे अमीर है, चाहे कैसा भी है, कोई ना कोई बीमार है, क्योंकि वहाँ सीरियस लोग ही ज़्यादा थे, तो उसके पास कोई ना कोई बैठा है, उसको रोटी पानी पूछ रहा है, सारा कुछ कपड़े बदल रहा है सारा। तो मुझको तो सिर्फ कोई जो हॉस्पिटल में होता है ना, मतलब आदमी ने, उसी ने कपड़े बदलना, उन्हें सारा कुछ करना। ओ, मैं लोगों को देख करके ने मेरे मन में ख्याल आया कि गृहस्थ जीवन ठीक है, समझे। और वो कि ये कोई ज़िंदगी है कि कोई पूछता नहीं, और लोगों के लिए मैं घर जा जा के और इतना इन लोगों को मेहनत किया, इतना सिखाया, इतना ध्यान कराया, इतना ग्रंथ पढ़ाया है, और आते हैं कुछ धर्म पैसा रख जाते हैं, सेव रख जाते हैं, ना तो मैं सेव खाना ना पैसा कर, और 5-10 मिनट के बाद नमस्कार करके चले जाते हैं। वो ख्याल हुआ कि गृहस्थ जीवन चंगा है, लेकिन चलो वो तो हमें तो उम्मीद नहीं था कि मैं चल फिर भी सकता हूँ, लेकिन वाहेगुरु ने ऐसी विधि बनाई कि ठीक हो गए। हालांकि डॉक्टर वो कहता था, डॉक्टर हरदास सिंह, डॉक्टर हरदास सिंह जो है ना, पंजाब का सबसे बड़ा हड्डियों का डॉक्टर हुआ, वो कह रहा था कि जी इसमें 1-2% बचने का चांस है, बाकी इस तरह के बचते हैं नहीं। जब ठीक हो गया वाहेगुरु की दया से, तो जब चलने फिरने लगा, तो डॉक्टर कहता है, स्वामी जी जो है मुझे कोई उम्मीद नहीं था, एक पैसा मुझे उम्मीद नहीं था कि आप बचोगे, लेकिन ये परमात्मा ने आपको नहीं जी। उसके बाद हमने गृहस्थ में आ गए 90 में, समझ जाओ 89 में बीमार हुए, एक साल के बाद जब ठीक हुए ना, हमने गृहस्थ में। तो जो महंत हरि सिंह जी थे, उन्होंने जो पंजाब लाए थे मुझको, वो पंजाब के सबसे बड़े वैद्य थे, वैद्यराज थे, उन्होंने मुझे आयुर्वेदिक दवाइयाँ सिखाए, और मैं 2-3 साल तो सीखा ही नहीं। मैं क्या महाराज साधु को की लेना देना है, जो है सो इससे ना गृहस्थ से बहुत नज़दीक हो जाता, मैं ये सीखना नहीं, 2-3 साल तो नहीं सीखा, लेकिन फिर भी कहते नहीं नहीं तुमको सीखना ज़रूरी है, ये तुमको भविष्य में काम आएगा। कहते ये ऐसी विद्या है कि तुम्हारे पास दोस्त भी आएंगे, दुश्मन भी आएंगे जरूरत पड़ने पर, और एक को विद्या ज़रूर दे के जाना पड़ता है, तो मैंने अभी तक किसी को दिया नहीं, इसको ज़रूर। और उन्होंने वो सिखाए, करीब 8-10 साल सिखाए, फिर उन्होंने सारा कुछ कैसे बनाना है, नंबर देखना सारा कुछ सिखाया, फिर उनके पास आते भी थे मरीज, फिर उन्होंने सारा कुछ ऐसे करते 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 करते, वो जब बीमार के बाद जब ठीक हुआ ना, वो वही विद्या मुझको काम आ गई, समझे। गृहस्थ हुआ ना, तो जो बहुत से कट्टर लोग थे वो करने लगे, स्वामी जी क्या जरूरत हुआ गृहस्थ होने का, सारा कुछ है। लेकिन मैं आपको बताया ना कि मैं कभी प्रवाह किया नहीं लोगों का, तो वहाँ पर फिर लुधियाना आ गया अमृतसर से, वहाँ पर अपना बनाया जो भी है, लेकिन वहाँ पर भी हमने कथा और सत्संग एक टाइम करना, जो भी लोग बुलाना, हफ्ता या 15 दिन अलग अलग जगह मेडिटेशन सिखाना और कथा करना। गुरु ग्रंथ साहिब जी का भी, गीता का भी, रामायण का, ये सारे। बाकी तो उसके बाद धीरे धीरे इंग्लैंड गया, कैसे सारा, फिर काफ़ सारा कुछ। लेकिन जो हमारी मेन साधना है वो 90 से पहले है। 90 से पहले ही सब कुछ वाहेगुरु ने कृपा किया। समझे? बाद में तो वो तो चलो अभी भी मैं करता हूँ साधना, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक जो है ना, जिसको कहते हैं संशय रहित ज्ञान, वो ज्ञान जिसमें कोई डाउट नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, वो हमें वाहेगुरु की दया से 90 से पहले। अभी हमें किसी तरह का संशय नहीं है। और दुनिया का कितना भी सम्मान वाला संत हो या बड़ा आश्रम वाला संत हो, तो मैं किसी को अपने से ऊपर नहीं मानता। समान तो मानता हूं, समझे कि नहीं? हमारे समान होगा या अज्ञानी होगा, हमारे से ऊपर नहीं होगा, ऐसा मानता। इसको आप अहंकार समझो चाहे कुछ समझो। क्यों ऊपर क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ज्ञान है ना, वो बुद्ध को हो या आपको हो या गुरु नानक देव जी को या किसी को हो, समझे ना? एक चांडाल को ज्ञान हो या राजा को ज्ञान हो, ज्ञान तो एक ही है, समझे ना? एक मान लेते हैं ये ट्यूब है, एक झोपड़ी में जला दो या महल में जलाओ, इसने तो वैसे ही रोशनी देनी है, समझ गए? इसमें कोई फर्क नहीं है, रोशनी में कोई फर्क नहीं है। झोपड़ी में फर्क हो सकता है, महल में फर्क हो सकता है, लेकिन रोशनी में, प्रकाश में कोई फर्क नहीं हो सकता। तो मुझे जो एक्सप्लेनेशन करने के तरीके में फर्क हो सकता है, हजारों लोग किसी को मानते हैं उसमें फर्क हो सकता है, धन में फर्क हो सकता है, और सारी बातों, बाहर की बातों में फर्क हो सकता है, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान है ना, उसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। यहाँ पर, यहाँ तक कि अनपढ़ हो, ABCD भी नहीं जानता हो, और उसको ज्ञान हो जाए, तो उसके ज्ञान में और बुद्ध के ज्ञान में कोई फर्क नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। एक्सप्लेनेशन में फर्क होगा। जो ज्ञान भक्त रविदास जी ने पाए वही कबीर जी ने पाए, वही बुद्ध ने पाए, लेकिन भक्त रविदास जी और भक्त कबीर जी को कुछ लोग जानते हैं और बुद्ध को सारी दुनिया जानता है। इस चीज़ों में फर्क है, समझ रहे ना बात? बहुत से ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत हैं जिनको कुछ इलाके के लोग जाने और दुनिया जाने ही नहीं, और बहुत से ऐसे हुए हैं जिसको सारा जगत माना है, समझे ना? तो ये डिपेंड करता है प्रचार के ऊपर, और ये डिपेंड करता है कि जो ज्ञान है उसका वो एक एक जनता तक कैसे आगे पहुंचाता है, और उसके सहयोगी कैसे मिल जाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आज जो हम बुद्ध को जानते हैं ना, उसमें राजा अशोक, राजा बिंबिसार और जो सोमेनी उस वेले के राजा थे ने, उन लोगों की देन है कि उन्होंने, राजा अशोक ने सारी संपत्ति राज का वो बुद्ध के प्रचार में लगा दिया। सर अब मान लेते हैं यहाँ का गवर्नमेंट हो, कनाडा गवर्नमेंट हो, तो ये तो चलो प्रजातंत्र देश है, ये अपनी मर्जी नहीं कर सकता। लेकिन मान लेते हैं राजा हो, राजा जो होता है वो पूरे देश का मालिक होता है, उसको कोई दूसरा राय नहीं दे सकता कि तुम खजाने को क्या करते हो। और वो एक राजा किसी संत के ज्ञान के प्रचार में सारा दौलत लगा दे तो नेचुरली है कि सारा देश का लोग उसको मानने लगेगा, चाहे जो भी। वो वही हाल बुद्ध के साथ हुआ। वहाँ से बोधि धर्म और भी लोगों ने चीन में जाके प्रचार किया, जापान, लंका, थाईलैंड, मंगोलिया, म्यांमार, जितने भी इलाके हैं वो और देशों में जा कर के भेजे और प्रचार किए, और उसका परिणाम जो है सारा कुछ। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि बुद्ध ने कोई गुरु नहीं बनाए। हाँ, जो अंतिम घटना जो घटती है ना जी, वो अंतिम घटना तो घटती ही, आपको बताया ना कि सड़क तक आएगा गुरु, बाद में कहेगा तुम अंधे। बुद्ध ने चारों तरफ से निराश होकर के एक दरख्त के नीचे बैठ गए, और जब सारे तरफ से जब टूट जाता है आदमी तो जो शेष रहता है फिर तो वही रहता है। उन्होंने संकल्प किए पीपल दरख्त के नीचे कि भावे मौत ही क्यों ना हो जाए, अब यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे। और कहते उसी रात वो इनलाइटेंड हुए। वो पूर्णमासी की रात थी, पूर्णमासी के दिन वो पैदा हुए, पूर्णमासी के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, पूर्णमासी की रात को ही शरीर शांत हुआ उनका। ये अनोखा घटना उनके साथ घटा। और ऐसे भी पूर्णमासी का महात्म है, समझे कि नहीं? वो कभी इसके बारे में जिक्र करूँ, टाइम काफ़ी हो गया, समझे ना? वो प्रश्न ही ऐसा आप कुछ बैठे, हालांकि काफ़ी लंबा था। तो चलो,
फाइन करना चाहिए
कोई बात। और गुरु योर फैमिली बैक, क्योंकि इन्होंने एक ही प्रश्न थोड़े पूछे हैं, हु इज योर फैमिली ग्राउंड। ये दो अपने लड़के हैं, एक दसवीं में पढ़ता है, प्लस टू में पढ़ता है शायद, समझे ना? प्लस टू में पढ़ता है, प्लस वन में शायद पढ़ता है, या मुझे कन्फर्मेशन, मतलब प्लस वन या प्लस टू में पढ़ता है। जो दूसरा है वो बीएमएस कर रहा है, समझे ना, आयुर्वेदिक से। वो 20 साल का होगा, मतलब 20, हाँ जी। तो वो दोनों पढ़ रहे अपना, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। और योर एकेडमिक वो भी बता ही दिया, स्पिरिचुअल रिलीजियस एजुकेशन, वो हमने वेद शास्त्र को भी पढ़ा है, और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को आद से लेके अंत तक 8 साल गुरु ग्रंथ साहिब का पूरा अर्थों के साथ है। श्रीमान ज्ञानी कृपाल सिंह जी, सत्तोवली गली अमृतसर, जो टकसाल था बाबा मनीष सिंह का, वहाँ पर रह करके 8 साल सारा गुरु ग्रंथ साहिब का अर्थ पढ़े। तो ये आपका हो गया स्पिरिचुअल रिलीजियस एजुकेशन, बस इतना ही है ना?